उनके परिवार का कहना है कि उनको कुछ दिनों से सर में दर्द था और फिर लोकल टाइम के हिसाब से 9 बजे रात के जो है काफी उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्हें मरी में एक हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन उस वक्त तक उनकी मौत हो चुकी थी और उनका परिवार ये कह रहा है कि उसकी वजह जो है उनको ब्रेन हेमरेज हुआ है और उस वजह से उनकी डेथ हुई है। तो उनकी उम्र थी 79 इयर्स की मौत के कुछ घंटों के बाद ही काफी उनको ट्रिब्यूट्स सामने आना शुरू हो गए लोकल मीडिया पे, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की तरफ से, इमरान खान की तरफ से, और वो जो पॉलिटिशियंस हैं जो यहाँ पे आर्मी के करीब समझे जाते हैं या जो इस्लामिस्ट माइंड के हैं, उन्होंने सबसे पहले जो है उनको काफी ट्रिब्यूट्स पेश किए हैं।
हामिद गुल साहब एक विवादित छवि भी रखते रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, खासतौर से भारत और अमेरिका के प्रति जो उनका रुख रहा है उसको लेकर के उनकी कई जगहों पर आलोचना भी होती रही है, लेकिन पाकिस्तान में लोग उनको किस तरह से देखते हैं?
पाकिस्तान में हामिद गुल साहब एक कॉन्ट्रोवर्शियल शख्सियत रहे हैं और वो लोग जो आर्मी के करीब हैं या जो इस्लामिस्ट जिहादी माइंडसेट के हैं या जो भारत और अमेरिका के खिलाफ रहे हैं, वो उन्हें अपना हीरो मानते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि वो बहुत खुलकर बोलते थे। देखें, वो 87 से 89 सिर्फ 2 साल रहे ISI के चीफ, के बाद 92 में वो रिटायर कर गए, लेकिन पिछले 2 दशकों से ज्यादा के अरसे में वो इंटरनेशनल मीडिया पे छाए रहे। जब भी इंटरनेशनल मीडिया को पाकिस्तान में आर्मी के किसी भी बात पे पूछना होता था कुछ, तो वो हामिद गुल को प्रेफर करते थे क्योंकि हामिद गुल बहुत ही आउटलैंडिश किस्म की बातें करते थे जिससे बाहर की दुनिया काफी हिल जाती थी। तो जैसा कि आपने कहा कि वो अफगानिस्तान हो या कश्मीर का मुद्दा हो या भारत के साथ रिश्ते हो या अमरीका के साथ, हामिद गुल जो है वो एक माइंडसेट को रिप्रेजेंट करते थे।
अफगानिस्तान में चरमपंथ है, उसको समर्थन देने की क्या वजह थी उनके मन में?
देखें, 80 के दशक में पूरी दुनिया ही सपोर्ट कर रही थी वहाँ पे मुजाहिदीन को। अमेरिका पैसे दे रहा था और हथियार दे रहा था, सऊदी अरब भी दे रहा था, और वो सब पाकिस्तान को दे रहे थे कि आप मुजाहिदीन की हिम्मत अफजाई करें। तो उस वक्त जो है मुजाहिदीन का साथ देना अच्छा समझा जाता था और इस काम में पाकिस्तान ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, ISI ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लेकिन जब सोवियत यूनियन को वहाँ पे शिकस्त हुई और 87-88 में सोवियत यूनियन वहाँ से चलता बना, तो अमेरिका का वहाँ पे इंटरेस्ट ख़त्म हो गया और इस बात पे हामिद गुल जैसे पाकिस्तानी जनरल्स को बड़ा गुस्सा था कि आपने अफगानिस्तान में इतनी लड़ाई लड़ी लेकिन अब आप उसकी रिकंस्ट्रक्शन के लिए या उसको स्टेबलाइज करने के लिए आप दिलचस्पी नहीं ले रहे। और यही वो टाइम था जब हामिद गुल जैसे लोगों ने जो भी फंड्स आए हुए थे, डॉलर्स आए हुए थे, हथियार आए हुए थे अफगानिस्तान के लिए, और जो भी इन्होंने मुजाहिदीन तैयार किए थे वहाँ के लिए, उनको डाइवर्ट करना शुरू किया कश्मीर की तरफ। और फिर आपको याद होगा कि 89-90 में फिर कश्मीर में जो है बहुत सारी इंसर्जेंसी शुरू हो गई, वहाँ पे हलाकतें और हमले और ये शुरू हो गए। तो वो अफगानिस्तान और कश्मीर इस तरह से मिले हुए थे कि बीच में पाकिस्तान जो है वो उसको मैनेज कर रहा था और हामिद गुल जैसे लोगों का उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था।
भारत के विरोध का मसला तो एक अलग बात है, लेकिन अमेरिका का विरोध वो करते थे और खुले तौर पर करते थे, तो क्या कभी पाकिस्तान सरकार को ये जरूरत महसूस नहीं हुई कि वो उनके बोलने पर या उनकी गतिविधियों पर रोक लगाने की कोशिश करे?
नहीं, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के अंदर ये खासा बिलीफ है कि अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान को यूज किया है, पाकिस्तान को मुश्किल वक्त में साथ नहीं दिया, और ये हमारे जो टॉप के जनरल्स भी हैं उनमें भी ये बिलीफ काफी पाया जाता है कि अमेरिका ने ऊपर से कुछ कहता है और अंदर से आपको अंडरमाइन करता है। और हामिद गुल खुलकर इसको जाहिर करते थे, इसीलिए वो तालिबान के सपोर्टर थे। वो उसामा बिन लादन को उन्होंने कभी भी कंडेम नहीं किया। सितंबर 11 के जो अटैक्स हैं उस पर भी उनकी अपनी एक थ्योरीज थी